ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में आप सबका कृष्ण बलराम मंदिर में पांच दिन के पुरुषोत्तम योग भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए मुखारविंद से भगवत गीता के 15वें अध्याय के सत्संग में आपका स्वागत है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। योग का मतलब है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। और कौन से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना? पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करना। तो हम इस भौतिक जगत में हैं, रह कहां रहे हैं हम सब लोग? हम सब लोग भौतिक जगत में रह रहे हैं। यहां इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान पुरुषोत्तम के साथ संबंध स्थापित करना है तो उसका साधन क्या है? प्रश्न ये है, हम रह रहे हैं इस जगत में और भगवान पुरुषोत्तम जो पुरुष उत्तम है वो अपने परमात्मा के रूप में तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, हमारे हृदय में भी है, लेकिन वो जो पुरुष है, उत्तम पुरुष जो है, वो तो साक्षात श्याम सुंदर, उसके साथ संबंध अगर स्थापित करना है तो क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है अथवा क्या चीज जरूरी है? तो 14वें अध्याय के अंत में, 14वें अध्याय का नाम क्या है? गुण त्रिविभाग योग। भौतिक प्रकृति के तीन गुण और उन गुणों को रस्सी कहते हैं जिन्होंने संसार सारे को बांध के रखा है। तो प्रकृति के तीन गुणों में सब बंधे हुए हैं, उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए, ये प्रश्न अर्जुन का 14वें अध्याय में है। तब भगवान ने साधन क्या बताया, माम च अविविचारेण भक्ति योगेन, जो मेरी श्री कृष्ण जब मेरी कहते हैं तो अर्जुन सामने खड़ा है उसको अपनी छाती की ओर उंगली करके कहते हैं जो मेरी, मेरी मतलब कृष्ण की, ऐसे नहीं कहते हैं मेरी सर्वव्यापक की, ऐसे नहीं कहते हैं। जब मैं कहते हैं तो अपनी ओर ऐसे छाती की ओर उंगली उठा के कहते हैं, यो माम अविचारेण भक्ति योगेन, ऐसी भक्ति जिसमें किसी और की ओर उसका ध्यान नहीं जाए, केवल मेरी ही भक्ति करे, स गुणान समतैते तान, वो सम्यक रूप से बहुत आसानी से तीन गुणों से मुक्त हो जाएगा। कहां जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वहां तो आपने कहा कि भक्ति के द्वारा तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, वहां तो आपने ब्रह्म की बात की है, यहां तो आप साक्षात श्याम सुंदर के रूप में मुझे मेरे सामने खड़े हैं, तो वो ब्रह्म और आप, इनका आपस में क्या संबंध है। वहां तो कह दिया ब्रह्म भूया या कल्पते, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि वहां तो आपने कह दिया ब्रह्म, लेकिन आप यहां मानव रूप में वहां मेरे सामने खड़े हैं, आप ही तो आपने कह दिया कि मैं ब्रह्म का आश्रित हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उसके बाद कह दिया मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं अथवा ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है। अब वो जो ब्रह्म आपके ऊपर आश्रित है तो ऐसे लगता है कि वेदों में ऐसे बहुत, ये तो सूत्र है 15 अध्याय का, ये सूत्र है कि ब्रह्म आपके ऊपर कैसे आश्रित है। ये बात समझना है कि आप ब्रह्म आपके ऊपर कैसे आश्रित है। जो भक्त तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, गुसा गुणान समतई तेतान, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है गुणों का बना हुआ, ये क्या है, ये भौतिक जगत जो गुणों का बना हुआ है ये क्या है, इसका रूप क्या है, ये कहां से शुरू होता है, ये भौतिक जगत की जड़ कहां है, ये कहां से शुरू होता है, और जीव इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु से कैसे पार करके आपके पास पहुंच सकते हैं। आपने कहा तो जीव ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म भूया ये कल्पते, तो वो ब्रह्म क्या है और आप ब्रह्म का आश्रय है, ये कैसे हमको समझ में आए, ये बहुत सारे प्रश्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उठाए हैं 15 अध्याय के शुरू होने से पहले। और प्रभुपाद जी कहते हैं आप भक्ति की बात तो कर रहे हैं कि भक्ति से तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, लेकिन वेदों में इतना सारा वर्णन है तो वेदों का तो आपने कहीं वर्णन किया ही नहीं है। भगवान आपने वेदों का कहां वर्णन किया, सब लोग तो वेद की बात करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी का जो यहां प्रश्न है 15 अध्याय के विषय में वो ये है कि ब्रह्म के विषय आपने, प्रभुपाद जी यहां कहते हैं आपने भक्ति योग का तो बहुत बड़ा महत्व बता दिया, लेकिन वेदों के बारे में क्या विचार है, लोग तो वेदों की बात करते हैं तो वेदों के विषय में क्या है, तो इस अध्याय में सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, सारे वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है, वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो सारे वेदों को जानने का उद्देश्य है श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानना। इसलिए जो कृष्ण भावना में है वो वेदों के सार को जानता है, ये प्रश्न उठाया गया है। अब पहला श्लोक पढ़ते हैं 15वें अध्याय का। तो 15वें अध्याय के शुरू होने में भगवान स्वयं शुरू करते हैं, अर्जुन का प्रश्न नहीं है, लेकिन दिखता ऐसे है कि अर्जुन पूछना चाहता है कि वो ब्रह्म कौन है जो 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 आपके ऊपर आश्रित है। तो आप जो सामने खड़े हैं वो, और तीन गुणों का ये संसार क्या है, इसका जड़ कहां है, इसका रूप क्या है, और इससे इससे छूटने का साधन क्या है। तो भगवान अपने आप ही भक्त वत्सलता, भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का अर्थ होता है भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वत्स की क्या परिभाषा है, वत्स बछड़े को कहते हैं, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उसको चाटती है और चाट के साफ करती है, जबकि बछड़े के ऊपर गाय का गोबर और जो है पेशाब लगा हुआ होता है मूत्र, और गाय सामान्य रूप से उसको अगर चारा दोगे और उसमें गाय का अपने मूत्र का थोड़ा सा भी दुर्गंध होगा तो नहीं खाएगी। तो जो गाय चारा नहीं खाती है मूत्र से सना हुआ, मूत्र से पेशाब से, वो अपने बच्चे को कैसे चाट के साफ करती है। ये गाय का जो बछड़े के लिए प्रेम है इसको भक्त वत्सलता कहते हैं। ऐसे भगवान भक्त के अवगुण नहीं देखता। और दूसरा, भारत में जन्म लिया है वो समझ सकते हैं कि गाय जब जंगल में चरने जाती है और वहां जब बच्चे को जन्म देती है बछड़े को, तो उसको गाय को घर में लाने का साधन क्या है, आप बछड़े को उठा के आए गाय पीछे भागती हुई आएगी, गाय को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बछड़े को उठा के लाओ गाय पीछे पीछे चली आएगी। तो जहां भक्त जाएगा भगवान उसके पीछे पीछे चला आएगा। क्यों चला आएगा, क्योंकि उसमें उसकी बहुत बड़ा प्रेम है, स्नेह है। तो भगवान भक्त वत्सल है, और उसी भाव से अर्जुन को संसार का स्वरूप बता के और संसार से निकलने का साधन बताते हैं। तो संसार का स्वरूप क्या बता रहे हैं, बोलिए। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं मूल अधःशाखं अश्वतः प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणामिनि यस्तं वेदस वेदवित। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधःशाखं अश्वतं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेदस वेदवित। तो श्री भगवान कहते हैं संसार क्या है, अश्वत्थ। संसार को अश्वत्थ नाम का वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष किसको कहते हैं, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं, और कहीं कहीं वट वृक्ष को भी अश्वत्थ पेड़ कहते हैं। जिसकी तो ये जो संसार है इसका नाम क्या बताया, ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम्। अश्वत्थ कहते हैं इस वृक्ष को, मतलब है पीपल का पेड़ है, लेकिन ये पेड़ कैसा है, ऊर्ध्व मूल। संसार में जो हम पेड़ देखते हैं उसकी जड़ें कहां होती हैं, नीचे होती हैं, ये पेड़ है इसकी जड़ें कहां हैं? ऊपर। अधस शाखा और इसकी जो डालियां है वो कहां है? नीचे, अधस शाखा। और एक शब्द और है अव्ययम। अव्ययम का अर्थ है व्यय हो, व्यय कहते हैं खर्चे को जो खत्म हो जाए। अव्यय कहते हैं जो कितना भी खपाओ खत्म ना हो और वैसे ही रहे। तो ये संसार वृक्ष कैसा है? अविनाशी है, थोड़ी देर नहीं दिखता है लेकिन रहता सदा है। अश्वत्थ का एक और अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है। आपने कुछ भाषाओं में सुना होगा, राजस्थान की भाषा में बोलते साकलो, साकलो मतलब कल, हमारी भाषा में कहते सवारे, सवारे का मतलब कल, तो शव का मतलब होता है कल, और अ उसके आगे लगाएगा तो इसका अर्थ होगा जो कल नहीं होगा, जो अभी है और कल नहीं होगा। अश्वत्थ का अर्थ होगा, अब इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस अश्वत्थ का ये अर्थ किया है, इसको आप देखिए बड़ा अद्भुत अर्थ है ये। शव का अर्थ है शव का मतलब टुमारो कल, और उसके आगे अ लगाएंगे तो हो जाएगा अश्वत्थ, उसका मतलब है समाप्त हो जाएगा, कल तो हमेशा नहीं रहेगा, कल रहने वाला नहीं है ये वृक्ष, कल रहने वाला नहीं है ये वृक्ष, कल नहीं रहेगा। ये वृक्ष कल नहीं रहेगा किसके लिए? न भक्तों के लिए रहेगा न अभक्तों के लिए कल ये रहेगा वृक्ष, ये कल नहीं रहने वाला है। इसका अर्थ क्या है? भक्तों के लिए कल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भक्त भगवान धाम चले जाएंगे, उसके लिए इस वृक्ष की क्या जरूरत है। और संसारियों के लिए ये वृक्ष कल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अपने इच्छाओं के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। यहां ये दो शब्द लिखे हैं, भक्ति के लिए ऐसे है कि ये कल तक नहीं रहेगा, अश्व मीन्स दैट विच विल नॉट लास्ट टिल टुमारो, फॉर नॉन डिवोसी हाउ इट अपियर्स टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल अव्यय। भक्तों के लिए तो ये ना कल नहीं रहेगा, लेकिन जो ये संसारी लोग के लिए ये वृक्ष कैसा है? अव्यय, अविनाशी है, वो सदा इसके अंदर ऊपर नीचे भटकते रहेंगे। तो ये संसार, एक संसार का अर्थ क्या है पता है? संसार का अर्थ है सरकते रहना, जो सड़क जैसे होती है ना, सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं की जाती है, सड़क गाड़ी को चलना पड़ेगा। संसार का मतलब है जो आज है वो नहीं कल होगा, आगे चला जाएगा। इसका एक उदाहरण देते हैं, आप गंगा में स्नान करने जाएं हरिद्वार में तो आप एक डुबकी लगाएंगे, और जब दूसरी डुबकी लगाएंगे तो वो पानी वही नहीं रहेगा जिसमें आपने पहले डुबकी लगाई, वो पानी तो चला गया। तो इस संसार में ये संसार सरकता जा रहा है, ये हाथ से जा रहा है। संसार की परिभाषा है जो जा रहा है, चलता है, रुकने वाला नहीं है, ये कल नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, आज अगर 22 तारीख है और आज का जो दिन है 2012 का, ये फिर कभी आने वाला नहीं है, ये कभी नहीं आएगा हमारे जीवन में, कभी नहीं आएगा दोबारा। ये 22 अगस्त शाम के 6:45 हमारे जीवन में दोबारा कभी आने वाले नहीं है, गए। इसका मतलब इसको संसार बोलते। तो ये वृक्ष संसार का क्या ऊर्ध्व मूल कहां है, फिर जड़ कहां है, तो संसार कहां से पैदा होता है, संसार का कौन है क्रिएटर? ब्रह्मा। सत्यलोक में संसार की जड़ है, चतुर्मुखी ब्रह्मा इसकी जड़ है। ब्रह्मा की जड़ क्या है? भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो ब्रह्मा की जड़ को देखेंगे तो विष्णु से निकलता है। कौन से विष्णु से? ब्रह्मा जी निकलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से। और ये तीनों विष्णु केवल भौतिक जगत की सृष्टि के लिए है, इन तीनों का और काम नहीं है, केवल सृष्टि करने के लिए ही ये तीन विष्णु के स्वरूप है, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। कारण उदक्ष शाही, कारण सागर में शयन करने वाला। कारण उदक का मतलब जल, शाही का मतलब सोना। कारण सागर में शयन करने वाले, गर्भ सागर में शयन करने वाले, खीर सागर में शयन करने वाले। भगवान कहां सिर्फ खीर सागर में शयन करते हैं, और खीर सागर के मंथन से लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ है ना। लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? खीर सागर से। और भगवान विष्णु कहां रहते हैं? तो ससुराल में ही रह रहे हैं ना, है? ससुराल से कभी चेक। पार्वती किसकी पुत्री है? और शंकर जी कहां रहते हैं? वो भी ससुराल के घर में ही बैठे हैं। वह आश्चर्य नहीं लगता है? तो वही है, वह हिलते ही नहीं है वहां से, एक क्षीर सागर में और एक कैलाश में। ये पुरानी ये भगवान से ये शिक्षा बड़ी अद्भुत आ रही है। अरे कृष्ण, सो शास्त्रों के अनुसार इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से जब ये संसार बनना होता है तो एक भौतिक प्रकृति का नाम है, उसको बोलते हैं प्रधान। और वो प्रधान जो है वो भौतिक प्रकृति सारी जिस चीज की बनी है, वो जब गोदान में पड़ी है, जब उसका कोई काम नहीं है तो उसको प्रधान कहते हैं। जब उससे सृष्टि बनानी होती है तो उसको बाहर निकाल के, जैसे हमारे फेस्टिवल का सामान कहीं गोदान में पड़ा हो, जब फेस्टिवल आएगा तो बाहर निकल के सफाई करते हैं, ऐसे जब सृष्टि करनी होती है तो प्रधान सारे को जब बाहर तैयार किया जाता है तब उसका नाम हो जाता है महत्तत्व। उसी प्रधान को महत्तत्व कहते हैं। उस महत्तत्व का नाम भगवद गीता के 14 अध्याय में है, महद ब्रह्म गर्भम ददामि अहम्। वो महद ब्रह्म कहलाती है प्रकृति, वो जो महत्तत्व है उसको भगवद गीता में क्या बोलते हैं? महद ब्रह्म। ब्रह्म क्यों कहते हैं? ब्रह्म तो वैसे प्रकृति को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसकी प्रकृति है? किसकी प्रकृति? किसकी है? भगवान की, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। जैसे देवी है एश गुणमयी मम माया दुरतया, तो माया को देवी क्यों कहते हैं? देवी कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि ये डिवाइन क्यों है? क्योंकि भगवान की है। किसकी माया है? भगवान की है। तो प्रकृति को महद ब्रह्म कहते हैं, तो वो महद ब्रह्म जो है उसको क्या कहते हैं? महत तत्व। और उसके अंदर कितने तत्व है प्रकृति के? 24 तत्व है प्रकृति के। उस महत तत्व में प्रकृति के 24 तत्व है, जिनसे ये सारी प्रकृति बनी हुई है। 24 तत्वों का नाम आप लोग जरा बताने का प्रयास कीजिए, मोटे मोटे। पहले 5 भूत जिसके हम बने हुए हैं, 5 भूत। क्या नाम है 5 भूतों के? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे है, आकाश, और आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये हो गए पंचभूत। पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीवा त्वचा, पांच हो गए। हाँ हो गए, पांच कर्म इंद्रियां, हाथ पांव, हाँ गुदा उपस्थ इंद्री, चार पांचवा जीवा। जीवा के दो काम है, हाँ जी, पांच इंद्रियों के विषय स्पर्श गंध रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये कितने हो गए, पंद्रह और पांच बीस तो ये हो गए, बाकी क्या चाहिए। तो तीन चीजें तो मोटी मोटी क्या है, मन बुद्धि अहंकार, एक क्या बच गया, मन बुद्धि अहंकार महतत्व सारा, उसको चौबीसवां बोलते हैं महतत्व। इंद्रियाणि दश एकम च पंच इंद्रिय गोचर, ये चौदहवें अध्याय में ये चौबीस तत्वों का वर्णन है, ये सारा महतत्व में ये सब चीजें हैं जो दिखती नहीं है। तो इसकी जड़ कहां है संसार रूपी वृक्ष की, ब्रह्मलोक में। शाखाएं क्या है, विभिन्न लोक, विभिन्न लोक, और विभिन्न लोकों में जो रहने वाले जीव हैं, ऊपर रहने वाले जीव हैं, जैसे कि देवता स्वर्गलोक में रहने वाले, गंधर्व किन्नर, ये ऊपर के रहने वाले लोक, यहां हम भूलोक में रहते हैं मानव, और अधो इससे नीचे लोक में रहने वाले। प्रभुपाद जी के शब्दों में सुन लीजिए कि ये जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, उसके लिए ये भौतिक जगत कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये इसका अर्थ है, ये सदा चलने वाला है, अव्यय, कभी खत्म नहीं होगा। वो एक डाली से दूसरे डाली में घूमेगा, कौन सी डालियां हैं बोल रहे हैं कि वो पहले तो डालियों का वर्णन बड़ा सुंदर लिखा है, ऊपर के लोगों में रहने वालों को कहते हैं देवता किन्नर गंधर्व बहुत सुंदर आदि, और नीचे लोगों में रहने वाले पशु पक्षी आदि, ये इनका वर्णन है कि ये ऊर्ध्व मूल ब्रांचेस, और वो शाखाएं क्या है, लोक जिनमें रहने वाले जीव देवता गंधर्व किन्नर असुर राक्षस प्रेत भूत मानव गाय घोड़े गधे पक्षी, ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि ये सारे जितने भी जीव हैं ये सब अलग अलग इसकी डालियां हैं। कितने जीव हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं असंख्य जीव है, असंख्य जीवों में कुछ स्थावर है कुछ जंगम है, कुछ चल सकते हैं कुछ चल नहीं सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं पेड़ आदि उनको छोड़िए, जो चल सकते हैं उसमें कुछ जलचर हैं, कुछ पृथ्वी में हैं, कुछ आकाश पे हैं। जल में 9 लाख भिन्न प्रकार के जलचर हैं, और आकाश में परंदे उड़ रहे हैं, और पृथ्वी के ऊपर पशु और मानव रहते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी के ऊपर रहने वालों में सबसे अल्प संख्या मानव की है, पृथ्वी के ऊपर रहने वालों में सबसे अल्प संख्या मानव की है, उस मानव की अल्प संख्या में भी आधे से ज्यादा तो पशु जैसे ही है, वो तो खा पी रहे हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि जीवन में धर्म क्या है, और नास्तिक हैं, सिर्फ खाने पीने में अपना जीवन बिता रहे हैं। और बाकी जो आधे हैं उनमें प्रायः बहुत से लोग कहते हैं कि हम धर्म को जानते हैं, लेकिन धर्म को मानता कोई भी नहीं। धर्म के जानने वाले बहुत हैं। आपको देखो, अभी आपका फार्म कभी भरते हैं तो उसमें लिखता है आपका रिलीजन लिखो, तब तो आप लिखेंगे हिंदू धर्म, लेकिन पूछे कोई कि हिंदू धर्म क्या है, वो तो पता नहीं। मालूम है, सब फार्म भरते हैं तो धर्म लिखते हैं, लेकिन धर्म क्या है तो किसी, बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म है क्या। तो महाप्रभु कहते हैं धर्म को मानने वाले तो बहुत कम है, अपने आप को धार्मिक कहते हैं लेकिन धर्म को जानते बिल्कुल नहीं है। और जो धर्म को जानते हैं वो भी केवल कर्म में विश्वास करते हैं और अपने आप को कर्मी मानते हैं। आपको कोई धार्मिक धर्म के ऊपर चलने वाला मिलेगा ना, कहोगे भगवत गीता हमको मालूम है, भगवत गीता में भगवान ने कर्म के लिए कहा है और सब हम कर्म कर रहे हैं, बस हो गया। आपको लोग ऐसे कहेंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते कोटि कर्म कर्मी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे कोटि कर्म करने वाले कर्मी अपने आप को कहते हैं, उनमें से कोई मुश्किल से एक श्रेष्ठ ज्ञानी होता है जो समझता है ये संसार बंधन है, इस संसार में फंसना ठीक नहीं है, हमको तो ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त जीव। ऐसे बहुत ज्ञानी हैं, जैसे आप देखें बहुत सारे सन्यासी घूम रहे हैं, डंडा लेके घूमते हैं, लेकिन उनमें से मुक्त कितने होंगे, इसका कोई एक मुश्किल से होता है जो ब्रह्म तक भी पहुंचता है। बाकी तो सारा प्रसाद और दक्षिणा लेके काम चला रहे हैं। हाँ, लाइन में खड़ा होना है, भंडारा खाना है, दक्षिणा लेनी है, गाड़ी चलनी चाहिए। एक हमारा भक्त था, मैंने बोला लाल कपड़े क्यों पहनते हो, बोला इसमें जहां भी जाते हैं प्रसाद और दक्षिणा दोनों मिलते हैं। बहुत सिंपल उसने उत्तर दिया कि भाई और कोई मतलब नहीं है, इसका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये अच्छा सा है, इसमें सब कुछ कोई समस्या नहीं। एक हमको कहा बद्रीनाथ में मिला भक्त, लोग यहाँ क्या कर रहे, बोला कुछ नहीं, तीन एक महीने आके यहाँ रहता हूँ, जहाँ भंडारा है वहां जाता हूँ, जब यहाँ से वापस जाता हूँ तो 20-25 हजार रुपये मिल जाते हैं, फिर एक साल पूरा खाता हूँ, फिर वापस बद्रीनाथ आता हूँ, मेरा काम ऐसे ही चलता है। सच बताया, बिल्कुल, बोला भंडारे में जाते हैं, यहाँ बैठे होते हैं किताब खोल के, लोग देखते हैं साधु है, लेके जाते हैं भंडारा खाते हैं, 100 रुपया मिलता है, तो कहीं 4-5 भंडारों में जानते हैं, 3 महीने के बाद बद्रीनाथ में 3-4 महीने रहते हैं, इतना मिलता है सारा साल घूम फिर के, फिर वापस बद्रीनाथ। तो ऐसे हैं तो साधु अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, उनमें मुक्त तो कोई एक मुश्किल से है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे कोटि कोटि जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और मुक्ति तक पहुंच भी गए हैं, उनमें से कोई एक मुश्किल से कृष्ण भक्त होता है। बहुत दुर्लभ है। आप समझ लीजिए प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप लोगों को भक्ति कितनी सरलता से मिली है, जो ज्ञानियों के लिए तो अलभ्य है लेकिन मुक्तों के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति शुरू भी मुक्ति के बाद होती है। भक्ति कहां से शुरू होती है? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जब कोई ब्रह्म के स्तर पे आता है, इसका मतलब मुक्त होता है। ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण का अर्थ पता है क्या है? निर्वाण का मतलब मुक्ति, निर्वाण का मतलब कोई, वैसे निर का मतलब नहीं और वाण का मतलब बाण, बाण का मतलब तीर, जहां कोई दुख नहीं। निर्वाण का मतलब दुख से मुक्ति, संसार में जो दुख है उससे मुक्ति, उसको निर्वाण बोलते हैं। तो निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण पे पद के जो ऊपर पहुंचता है वो मुक्त है। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, उसको बहुत प्रसन्न है, आनंद में है, ब्रह्म आनंद के सामने इस दुनिया का आनंद कितना है। वारी में एक बूंद पानी का, रेगिस्तान में प्यासे को कोई कहे कि तुम्हें प्यास लगी है, बोलो हां, तो तेरे को एक बूंद पानी का देंगे तो क्या उसको सुख मिलेगा। तो संसार का सुख ब्रह्म आनंद के सामने रेगिस्तान में एक पानी की बूंद के बराबर है, लेकिन ब्रह्म आनंद भी कृष्ण प्रेम के सामने उतना ही बूंद के बराबर है। तो कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त, तो ये जो आपको सौभाग्य से कृष्ण भक्ति मिली है, ये बड़ी संभाल के रखने की चीज है। और ये जो इसके लिए जो सबसे मुख्य इस अध्याय से एक शिक्षा मिलेगी, कल इसको जब आगे बढ़ाएंगे, संसार वृक्ष क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वृक्ष को काटा जा सकता है। वृक्ष का अर्थ होता है जिसको काटा जा सके। वृक्ष की परिभाषा ये है जिसको काटा जा सकता है। तो हमारी भक्ति के लिए मुख्य सबसे एक ही साधन है, संसार वृक्ष को काटना। ये नहीं जब तक कटेगा, एक डाली से दूसरी डाली तक चक्कर लगाना पड़ेगा और इसका कभी अंत आना ही नहीं है। अव्यय अविनाशी है, घूमते रहो यहां से वहां, कहीं छूटने का रास्ता है ही नहीं। सो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। कांक्षती का मतलब कुछ उसको पाने की इच्छा नहीं है, और कुछ चला जाएगा तो उसका शोक भी नहीं है। शोक करका दुख करना कुछ जाने के ऊपर, उसका हमारे चप्पल बाहर नहीं मिलेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। हाँ, यहां से बाहर निकलेंगे, हमारी परेशानी तो इस दरवाजे के ऊपर खड़ी है। लेकिन जो ब्रह्म स्थल के ऊपर है, कुछ जाने का चिंता नहीं है और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। आत्मा रामा, अपने आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्म आनंद का अनुभव करते हैं। ये हम सिर्फ किताबों से सुनते हैं, शास्त्र से, इसका अनुभव हम में से किसी को भी नहीं, किसी को भी इसका अनुभव नहीं। लेकिन इसको पाने की इच्छा तो करनी चाहिए कि ऐसा आनंद भी होता है। और जब इस स्तर पे कोई आता है ना, मद भक्तम लभन्ते पराम, तब उनको मेरी परम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति कहां से शुरू होती है? मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। ये श्लोक इतना साफ है कि ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर पहुंचने के बाद ही भक्ति शुरू होती है। मद भक्तिम लभते पराम, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। तत्वतः मेरे को जानने वाले मनुष्यों में हजारों में से कोई सिद्धि को प्राप्त करके सीधे रास्ते के ऊपर चल के साधन करे, भजन करे, जप तप करे, तो ऐसे हजार जो साधन करने वाले जैसे हम हैं, उनमें से कोई एक होता है जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति, वो ऐसा हजारों में से कोई एक होता है जो ये साधन करता है, सीधे रास्ते के ऊपर चलने का साधन करता है, सत्य को जानने का अभिलाषी होता है, जिज्ञासु होता है। और ऐसे हजारों जिज्ञासी इकट्ठे हो जाए, उनमें से कोई एक मुझे जानाति तत्वतः, तत्व से मुझे जानते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं तत्व क्या है? तत्व कृष्ण तत्व क्या है? प्रभुपाद कहते कृष्ण तत्व कृष्ण विज्ञान है। कृष्ण विज्ञान है, और ये कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्व किताबों पढ़ने से नहीं आने वाला, और किसी संसार के साधन से मिलने वाला नहीं है। संसार के क्या, भगवान तो यहां तक कह जाते हैं कि न योग से, न तप से, न दान से ये प्राप्त हो सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं, उनके लिए भी ये दुर्लभ है। तो किसको मिल सकता है ये कृष्ण तत्व को कौन जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, या मेरा भक्त मुझे जान सकते हैं। कैसे? यावान यचस तत्वतः। ये जो कृष्ण साइंस है केवल भक्ति के द्वारा जानी जा सकती है। और ये तत्व क्या है, इसको चौथे अध्याय भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। इस मेरे धरती के ऊपर प्रकट होने को और मेरी लीलाओं के तत्व को जो दिव्य मानता है, इस लोक का नहीं है, दिव्य है, ये तत्व किसी की समझ में आ जाए वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया, उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं है। ये तत्व कहां से मिलेगा? किताबों से मिलेगा? नहीं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवदया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शन। तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में बैठकर परम की प्राप्ति के प्रश्न पूछने से और सेवा करने से तत्व को जानने वाला तत्व की शिक्षा देगा। और ये कौन तत्व जानने वाले, कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? जब जब गुरु की बात कह रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जो कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व वेता, यहां भी तत्व वेता शब्द है। तो ये तत्व जानने के लिए पहले तो संसार को जानना है जिसमें हम रह रहे हैं, और फिर इससे निकलने का साधन क्या है ये सीखना है। जब निकलना है तो फिर कहां जाना है उस जगह का पता लगाना है। तो अब हमारे को काम कितने करने हैं 5 दिन में, संसार को समझना, संसार से निकलने का रास्ता ढूंढना, और निकलने के बाद कहां, जेल से तो निकले लेकिन जाना कहां है ये पता नहीं हो तो, जेल के दरवाजे पे आए लेकिन कहां जाना है ये पता नहीं हो तो क्या करेगा। हम जेल में प्रचार करने गए, एक स्त्री हमको मिली, बोला 14 साल मेरा जेल में हो गया है, अब ये मुझे कहते हैं तुम निकलो बाहर जाओ। मैं कहां जाऊं, मेरे ऊपर केस था कि मैंने पति को मारा, मैं मारा या नहीं मारा इसको छोड़ो, अब मैं ससुराल में जाऊंगी तो वो कहेंगे पति को मारा था, हमारे घर मत आओ, समाज में मुझे पति हत्यारी कहेंगे, मैं जाऊं कहां, यहां सबको रोटी पकाती हूं खिलाती हूं, अब मैं जाना नहीं चाहती हूं, ये मुझे कहते हैं जाओ बताओ। जेल से निकलना नहीं चाह रही थी, सच्ची बात बता, क्योंकि बाहर कोई रास्ता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो जेल ही। इसलिए इस दुनिया में सब लोग रहना चाहते हैं घूम फिर के, फिर यही आते हैं कि यह भी पता नहीं है कि जाना कहां है। जब जाने का पता नहीं होगा तो आदमी जहां है वहीं तो पड़े हैं ना कम से कम। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि सब इधर ही रहना चाहते हैं क्योंकि कहीं और जगह है उसे जाने का पता ही नहीं है। तो इसलिए ये अध्याय हमको बताएगा कि कहां जाना है उसका पता करो, कहां जाना है उसका पता करो, और जहां जाना है वो पुरुषोत्तम है। जहां जाना है वो पुरुषोत्तम है, और इस संसार में सब उससे नीचे अधम है, बहुत छोटा है, वो एक पुरुषोत्तम है, वहां जाना है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थ प्राहु छंदांसी यस्य प्राणी। इस वृक्ष के पत्ते क्या हैं? वेदों के छंद, यजुर्वेदों के छंदों में क्या है? कर्मकांड करो, ऊपर लोग जाओ, फिर वापस आओ। ये जो सुंदर वृक्ष लग रहा है, वृक्ष पता है कब सुंदर लगता है? जब उसमें पत्ते होते हैं। पत्ते जब झड़ जाते हैं तो नंगा वृक्ष अच्छा नहीं लगता है। तो वेदों के छंदों ने इस वृक्ष को ढक के रखा है, नहीं तो अपने आप में ये तो बहुत बड़ा नंगा डरावना है। देखो, वृक्ष के अंदर पत्ते नहीं हो तो रात को भूत की तरह लगता है, लंबा लंबा खड़ा हो और कोई पत्ता ऊपर नहीं हो। तो वेद की ऋचाएं, वेद के छंद इसके पत्ते हैं। ऊर्ध्व मूल दशाक अश्वतम प्राहु अव्यम छंदान से यश। जो इसको जानता है वो वेद को जानता है, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जानता है। सवेदवित, इसका मतलब वो वेद को जानता है। तो वृक्ष को वेद से जानने से वेद को जानने वाले कैसे हो जाएंगे? वेद को जानने का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो इस वृक्ष को जानने से भगवान श्री कृष्ण को कैसे जानेंगे? इस वृक्ष की जड़ में जाएंगे तब ब्रह्मा जी मिलेगा। तब नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे पिताजी, ऐसे लगता है कि ये सृष्टि तो आप ही बनाते हैं, ये सृष्टि आपके हाथ की हथेली के ऊपर अखरूट जैसी लगती है, इसको तो आप आगे पीछे से चारों ओर से जानते होंगे, आप ही तो इसके निर्माता हैं ना। ऐसे नारद जी ने दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में पूछा है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने ऐसे कानों के ऊपर हाथ रख के कहा, मैंने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, इसका मालिक कोई और है, मैं तो सेवक हूं, आज्ञा का पालक हूं। तो ब्रह्मा जी जब ये हम सुनेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं इसको चलाने वाला, मैं मेरे को भी चलाने वाला कोई और है। तो हमारे को ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के पास क्या है? वो वेद को क्यों जानेगा जो इस वृक्ष को जानेगा? क्योंकि वृक्ष की जड़ तक पहुंचेगा, और वृक्ष की जड़ में कौन बैठा है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के कितने मुख है? और चारों मुखों से क्या निकलता है? चार वेद। तो वेद तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ब्रह्मा तक पहुंच गया, तो वेद तक पहुंच गया। और ब्रह्मा से जब पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा बताएगा ना। जब ये ब्रह्मा बताएगा तो फिर इस वृक्ष को जानने से हम वेद को जान गए कि नहीं जान गए? वेद के रहस्य को जान गए कि नहीं जान गए? तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। जब नारद ने ये कहा, पिताजी ये सृष्टि आपके लिए ऐसे है, तो ब्रह्मा जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद जी को लोगों ने कहा कि आपने इस कान की स्थापना की है, आप इसके संस्थापक हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया? इस कान का आदि संस्थापक तो भगवान श्री कृष्ण है, नहीं कहा मैं हूं। भगवद गीता के आमुख में पढ़ के देख लेना, दूसरे ही पेज पे लिखा है कि लोग मुझे कहते हैं, ये सुनिए, अगर सुनना है तो प्रभुपाद जी के अपने शब्द, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। सम ऑफ देम माने कुछ अमेरिकन लोग, उनके माता पिता, वो मुझे कहते हैं कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं अमेरिका वाले, क्योंकि आपने यहां कृष्ण भावना आंदोलन शुरू किया अमेरिका में। और प्रभुपाद जी कहते हैं, बट एक्चुअली दी ओरिजिनल फादर ऑफ दिस मूवमेंट इज लॉर्ड कृष्णा, असल में इस संस्था का आदि पिता भगवान श्री कृष्ण है। और ये तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, लॉन्ग लॉन्ग एगो इट इज स्टार्टेड। और ये तो ऐसे परंपरागत नीचे आ रहा है। अगर मुझे आपको कोई देना है क्रेडिट, आप समझे कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, तो मैंने तो केवल अपने गुरु की इच्छा पूरी की है। मैंने अपने परम पूज्य गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज परिव्रजक आचार्य परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्ति संत उनकी आज्ञा का पालन किया है बस। अब बताइए, सबको मालूम है कि इस्कान की संस्थापक प्रभुपाद जी है, लेकिन प्रभुपाद से पूछो तो क्या बता रहे हैं, कृष्ण है, मैंने केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। तो ऐसे जब ब्रह्मा तक पहुंचेंगे जन्मे तो ब्रह्मा क्या कहेगा, मैं नहीं हूं, कृष्ण है, मैंने तो उसकी आज्ञा का पालन किया है। तो समझ में आ गया कि आ जाएगा कि नहीं आएगा वेद, सवेद सवेद अभी तक। ऐसा वृक्ष कभी देखने को मिलता नहीं है, देखा है कभी ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हो और उसकी शाखाएं नीचे हो? प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि ऐसा वृक्ष कहां दिखता है, नदी के किनारे पे, उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो दिखता है। तो प्रतिबिंब असल है कि असल नहीं है ना? तो ये संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। एक ड्रामा करते हैं भक्त, नदी के किनारे पे एक पेड़ है और पेड़ में सुंदर फल लगे हुए होते हैं, लेकिन जो आदमी नदी में बैठा है खड़ा खड़ा देखता है, नदी में फल दिख रहा है, हिल रहा है और ऐसे नीचे जंप लगाता है तो फल तो हाथ आता नहीं है, पानी में डुबकी खाता है और फिर वापस आता है, फिर देखता है फल है और उसमें डुबकी लगाता है तो फल मिलेगा उसको? अब कोई उसको हाथ से पकड़ के फिर कहता है फल उधर नहीं है, फल पेड़ में है, नीचे तो केवल आपको उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये सारा जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उसका अक्ष है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी है वो असली जगत में है। तो जो वृक्ष जल में दिखाई देता है प्रतिबिंब, वो किसके ऊपर आश्रित है? जल के ऊपर। जो वृक्ष का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है वो किसके ऊपर आश्रित है? पानी के ऊपर। पानी होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये जो संसार का वृक्ष है ये किसके ऊपर आश्रित है? इच्छाओं के ऊपर, हमारी इच्छा रूपी जल के ऊपर ये संसार वृक्ष टिका हुआ है। इच्छा बदल दो, इच्छा को भगवान की सेवा में लगा दो, इच्छाओं को कम कर दो, संसार वृक्ष अपने आप समाप्त हो जाए। जस्ट लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री इज इन इज ऑन द वाटर, सिमिलरली दिस वर्ल्ड दिस एग्जैक्टली प्रभुपाद की भाषा में सुनिए, इन प्रभुपाद ओन वर्ड्स इट लुक लाइक नाइस। द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सिचुएटेड, पहला फर्स्ट लाइन है, द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। This reflection of the spiritual world is situated on desire, just like the tree's reflection is situated on water. तो भौतिक जगत का ये सारा पसारा हमारी इच्छाओं के कारण है। हमने इच्छा की इसलिए हम यहां आए। जीव अपनी इच्छा के कारण यहां आया। अब यहां से जाने के लिए भी हमको इच्छा करनी पड़ेगी। अपने यहां बैठे हैं, कितनों की इच्छा वापस भगवान भगवत धाम जाने की है? ये सोच लेना, अभी कहीं से ये राधा श्याम सुंदर यहां से निकल के और कहे कि हम आपको अभी अभी ले चलते हैं गोलोक धाम, तो सभी लोग भाग जाएंगे यहां से, एक भी नहीं दिखेगा। जो बैठने वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा, सोच लो, फिर भी सोच लीजिए। हमारा अनुभव है कि थोड़ा काम है निपटा के आए, फिर देखेंगे। चाबी मेरे पास पड़ी है, लड़के को दे के आते हैं और पर वापस ही नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं 99% लोगों की इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने की। ये तो सोचते हैं कि यहां कुछ एडजस्टमेंट से काम चल जाएगा हमारा, ये अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो ठीक ही हो जाएगा ना, इसमें क्या। प्रायः यही हम कोई ना कोई रद्द बदल करके एडजस्टमेंट करके यही खुश, भगवान हमारे को यही खुश रखो, आप वहां अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, आपके पास आया जाया करेंगे। अब हमारा स्तर अभी तक ये है, शर्मा जी बहुत अच्छी बात है, ये इच्छा उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है, ये इच्छा होना बहुत बड़ी बात है कि हमें वापस भगवान के पास जाना है। ये सारी शिक्षाओं का एक ही उद्देश्य है कि ये इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो कि हमें भगवत धाम जाना है। अभी तो इस दुनिया को देखने का बहुत बड़ा शौक है, तो कुछ भी नहीं देखा है अभी। अब जब नारद ने प्रचार करके 10,000 दक्ष के बच्चों को शबला सबको संसार के भय से बचा के भगवान की सेवा में लगाया, तो दक्ष ने कहा क्या आपने मेरे बच्चों को, अरे उन्होंने संसार देखा नहीं, संसार में कुछ उसने भोग किया नहीं, उससे पहले तुमने साधु बना दिया, ये कोई अच्छा काम किया। नारद ने कहा संसार में क्या है, किसी आदमी को कहा जाए कि तुम 5 मंजिल से गिरोगे तो हड्डी टूट जाएगी, तो तुम कहोगे नहीं नहीं कभी गिराई नहीं है, गिर के तो देखो, तो ऐसे कोई कहेगा कि गिर के देखो, अरे गिरेगा तो हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो ये इतना सत्य है कि जो 5 मंजिल से गिरेगा उसकी हड्डी टूटेगी, ये सत्य है कि झूठ है। इसके बाद भी कोई कहेगा मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, उसको मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो नारद कहता है आप संसार को एक्सपेरिमेंट करके मूर्ख क्यों बनाना चाहते हो, फंस ही जाएगा, फिर निकलना ही मुश्किल है। दूसरे भी 10,000 बच्चों को ऐसे साधु बना दिया। अब दक्ष को बहुत क्रोध आया, बोला ये हमको ब्रह्मा जी ने कहा है सृष्टि बढ़ाओ, तू ब्रह्मा का पुत्र हो के हमारे काम में बाधा डालता है, तेरे को तो शराब देते हैं कि तुम एक जगह 3 दिन भी रुक नहीं सकते हो। और फिर दक्ष ने कहा अब लड़कियां पैदा करता हूं, ब्रह्मा ये नारद नजदीक ही नहीं आएगा, ये ब्रह्मचारी है लड़कियों को ले जाएगा तो बदनाम हो जाएगा। अब तो आसान रास्ता समझ में आ गया कि सिर्फ ये अपने आप लड़कियां बनाते हैं, ऐसी से हो जाएगी, नारद इनके पास तो आने वाला है नहीं। तो दक्ष ने फिर सारा बच्चे पैदा करने का फार्मूला ही चेंज कर दिया, लड़के ही लड़कियां पैदा की, और यहां सब लड़के पैदा करना चाहते हैं और हम एक भक्त बनाते हैं तो हमारे से झगड़ा करने आते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं भी इतने बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े मेरे लिए अच्छे रहने के लिए भवन बनाए हैं, लेकिन मेरे भक्तों के ने भी माँ बाप ने, मेरे भक्तों के माता पिता ने मुझे भी शराप दिया है, मैं भी कहीं 2 दिन रह नहीं सकता। प्रभुपाद ने कहा अपने मुख से कि मुझे भी शराप दिया है, मैं भी एक जगह 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता। तो आप सोच लीजिए भक्त बनाने से शराप मिलेगा, कहीं एक जगह टिक नहीं पाएंगे, घूमना पड़ेगा, फिर भी भक्त बनाना चाहते हो। अरे कृष्णा, या आपने हाथ ऊपर किया और माता जी देख रही है। अरे कृष्णा, तो पहले श्लोक को हमने आज पढ़ा है, आज पहला दिन है, कल थोड़ा सा ये श्लोक पुरुषोत्तम योग को समझने का प्रयास करेंगे। असल में हम प्रयास करेंगे कि आपकी सेवा कितनी कर सकते हैं, क्योंकि VIC में हमको 4-5 घंटे बोलना पड़ता है, तो यहां आते आते अभी मेरे को दिखता कुछ नहीं। जो भी है वेद को जानने वाला जो है वो है जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, और जब इसको जानेगा तो फिर इसको काटने का रास्ता भी समझ में आएगा, और काट के कहां जाना है वो भी पता लग जाएगा। तो ये 20 अध्याय का 20 श्लोकों का छोटा सा अध्याय है, और इसका हम प्रयास करेंगे कि समय के अंदर पूरा करें। अब यहाँ दूसरे पुरुषोत्तम मास के सेवा की समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय की। हरे कृष्ण।